रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ, आज ही लिया पदभार। उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के काम में जुट जाने की नवनियुक्त उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पटेल ने जताई प्रतिबद्धता। बजट से संबंधित 3 विधेयक राष्ट्रीय सभा से हुए पारित। त्रिशूली नदी में लापता बसों के अब तक 13 यात्रियों के मिले हैं शव। और रूस ने अपनी प्रतिरक्षा में 22 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराए होने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल ने प्रधानमंत्री ओली को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में राष्ट्रपति पोर्टल ने उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पोर्टल और उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह के साथ साथ नवनियुक्त मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति, निवर्तमान प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायों के प्रमुखों, कूटनीतिक निकायों के प्रतिनिधियों, सांसदों और नागरिकों की उपस्थिति थी। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। आज राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में संपन्न हुई आज की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक ने कीर्तिपुर में सुविधा संपन्न खेल मैदान बनाने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में पदबहाली के बाद हुई बैठक ने ये निर्णय किया। ये जानकारी प्रधानमंत्री ओली के सचिवालय ने दी। रंगशाला में दर्शकों के बैठने के लिए पैराफिट, रात्रिकालीन खेल के लिए फ्लड लाइट और आवश्यक संरचना बनाने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया। इस काम के लिए 300 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। बैठक में सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग को देने का निर्णय भी किया है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति कार्यालय में पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद एमाले मुख्यालय चासल पहुंचे प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी के संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, एमाले के अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी और पार्टी के तत्कालीन महासचिव मदन भंडारी की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री के साथ ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे एमाले की ओर से सरकार में सहभागी नवनियुक्त उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोडेल, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टाराय, रक्षा मंत्री मानवीर राय और सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामला मंत्री राम कुमार गुप्ता ने भी उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया था। नेपाली कांग्रेस की ओर से नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह, गृहमंत्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा, युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजूलाल चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे, कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का और वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ने स्वर्गीय बीपी कोइराला की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। नवनियुक्त उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पोटेल ने अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावकारी तौर पर परिचालित करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज अर्थ मंत्रालय में पद बहाल होने के दौरान उप प्रधानमंत्री पोटेल ने प्रतिबद्धता जताई कि देश में उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजन और आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के काम में सरकार जुट जाएगी। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार की सोच को क्रियान्वित करने के लिए पिछली सरकार द्वारा लाया गया बजट बाधक नहीं होगा, उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन के क्रम में अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसका कानूनी व्यवस्था के तहत निराकरण किया जाएगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार सूचना प्रविधि के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता देगी। नवनियुक्त संचार मंत्री गुरुंग ने आज मंत्रालय में पदबहाली करते हुए बताया कि वे सूचना प्रविधि से संबद्ध निकायों की पुनः संरचना करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों को नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए त्वरित सेवा प्रवाह करने का निर्देश भी किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नवनियुक्त गृह मंत्री रमेश लेखक ने विधि के शासन, शांति सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के काम में दत्तचित्त होकर लगने की प्रतिबद्धता जताई। आज मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने संचार जगत से आग्रह किया कि वे गृह मंत्रालय से हो रहे काम कार्यवाही की सूक्ष्म अवलोकन करके सुझाव दें। गृहमंत्री लेखक ने आगे कहा कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुई जनधन की क्षति को संबोधित करना वर्तमान की मुख्य प्राथमिकता है। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि नेपाल में कैंसर से बड़ी तादाद में नेपाली पीड़ित हैं, इसलिए वे कैंसर पर नियंत्रण और रोकथाम के काम पर विशेष बल देंगे। उन्होंने एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और व्यवस्थित करते हुए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा से अवगत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। रक्षा मंत्री मानवीर राय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए नेपाली सेना की क्षमता अभिवृद्धि और काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग को समय पर ही संपन्न करने का विषय उनकी प्राथमिकता में है। आज रक्षा मंत्रालय में पदभाली के दौरान उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रीय सभा ने 3 विधेयकों को पारित कर प्रतिनिधि सभा में वापस भेजा है। उन विधेयकों में आर्थिक विधेयक 2081, राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2081 और भंसार महसूल विधेयक 2081 शामिल हैं। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने बैठक में इन विधेयकों को विचार विमर्श के बाद पारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने बताया कि तीनों ही विधेयकों को विचार विमर्श के लिए प्रतिनिधि सभा में वापस भेजा गया है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 4 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न स्थानों में हुई क्षतियों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक के आकस्मिक समय में बीते रविवार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ और डुबान के कारण हुई क्षति का जिक्र करते हुए सांसदों ने उद्धार और आवश्यक राहत देने का सरकार से आग्रह किया। चितवन के भरतपुर सिमलताल में बीते शुक्रवार को भूस्खलन के साथ त्रिशूली में गिरकर लापता हुई 2 बसों के यात्रियों में से अब तक 13 शव बरामद हुए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के सूचना अधिकारी DSP वेद बहादुर पौडेल ने बताया कि आज ही जिले में 4 शव पाए गए हैं। नवलपुर में अब तक मिले 9 शवों में से 5 की शिनाख्त हो गई है और इस बात की पुष्टि हुई है कि वे शव लापता यात्रियों के ही थे। आज सुबह गंडक बैरेज पर पाए गए 2 शवों में से एक करीब 19 वर्षीय महिला और दूसरा करीब 30 वर्षीय पुरुष का है। आज ही मध्य बिंदु 2 भूताहा स्थित नारायणी नदी के टापू पर पाया गया शव करीब 45 वर्षीय पुरुष का और विनयी त्रिवेणी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 गंडक बैरेज के पुल के पास करीब 13 वर्षीय बच्चे का बताया गया है। जिले के गैडाकोट गैरी में पाए गए 2 शवों में से एक सरलाहे की बरहतवा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 19 वर्षीय रमित कसूर मांझी और दूसरा चितवन की माड़ी वार्ड नंबर 1 के 22 वर्षीय विकास परियार का था। शवों की पहचान उनके परिजनों ने की थी। पुलिस ने बताया कि पहचान खुल चुके शवों को चितवन के भरतपुर अस्पताल पहुंचाया गया है और बाकी शवों की पहचान खुलने के बाद उन्हें भरतपुर भेजा जाएगा। इसी बीच चितवन प्रशासन ने बताया है कि सिमलताल भूस्खलन की चपेट में लापता हुई वीरगंज से काठमांडू आ रही एंजल डिलक्स बस में कम से कम 24 और काठमांडू से रोहतक जा रही गणपति डिलक्स बस में कम से कम 27 यात्री सवार थे। मनकामना केबलकार आज से 50 दिनों के लिए बंद रहेगा। केबलकार का डिजिटल सिस्टम में अपग्रेडिंग का काम होने के कारण केबलकार 50 दिनों के लिए बंद होगा, ये जानकारी मनकामना दर्शन प्राइवेट लिमिटेड ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने अपनी प्रतिरक्षा के क्रम में 22 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। मंत्रालय ने रूस की हवाई रक्षा प्रणाली ने 22 यूएवी को नष्ट किए होने का दावा किया है। मंत्रालय के अनुसार रूसी सीमा क्षेत्र ब्रायंस्क में 15, क्रीमिया में 6 और लिपेट्स्क में 1 ड्रोन को मार गिराया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ, आज ही लिया पदभार। उत्पादन में वृद्धि, रोजगारी सृजन और आर्थिक वृद्धि के काम में जुट जाने की नवनियुक्त उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने जताई प्रतिबद्धता। बजट से संबंधित 3 विधेयक राष्ट्रीय सभा से हुए पारित। त्रिशूली नदी में लापता बसों के अब तक 13 यात्रियों के मिले हैं शव। और रूस ने अपनी प्रतिरक्षा में 22 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराए होने का किया दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।